नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत ने राजनयिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया। गाजा में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने इसराइल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित की। इसराइल ने कहा बाहरी दबाव में अपनी सुरक्षा नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। मौसम विभाग ने 26 मई तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों तरफ से की जा रही गोलीबारी में सुरक्षा बल का एक जवान घायल हुआ है।
सुरक्षा बलों को यह खुफिया सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इस सूचना के बाद छत्तीसगढ़ के चार जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। आज सुबह से अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक शीर्ष नेता सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के भी मारे जाने की खबर है। इस नक्सली नेता पर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। यह शिष्टमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा ताकि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए देश के दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जा सके। रवाना होने से पहले नई दिल्ली में श्री संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का एक हिस्सा है।
आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। इनके नकाब को उतारना, वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना, ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे।
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल भी आज संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सियरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए 7 बहुदलीय शिष्टमंडलों का गठन किया गया है। ये शिष्टमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि आतंकवाद का मुकाबला करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने समुद्री डकैती, आतंकवाद और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हाइब्रिड हमलों का उल्लेख करते हुए समुद्री खतरों पर चिंता व्यक्त की। सीमा सुरक्षा बल ने कल शाम पंजाब में अमृतसर के सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार घुसपैठिए ने बताया कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। उसके पास से 330 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। आगे की जांच के लिए उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि श्री खड़गे की टिप्पणी निंदनीय है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक है।
जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे।
कल कर्नाटक में एक कार्यक्रम में श्री खड़गे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता और के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का स्मरण कर रहे हैं।
हरियाणा में जन्मे मेजर होशियार सिंह जून 1963 में तीसरी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन को बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम सौंपा गया था, जो दोनों तरफ गहरी बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी। मेजर सिंह सी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें जरपाल इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी पर दुश्मन की ओर से मशीन गनों से भारी गोलाबारी हुआ। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह हिम्मत नहीं हारे और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए एक खाई से दूसरी खाई तक आगे बढ़ते गए। जब वे अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास आकर गिरा, जिससे चालक दल के लोग घायल हो गए। मेजर होशियार सिंह स्थिति को समझते हुए तुरंत मशीन गन पिट की ओर दौड़ लगाई और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गन को संभाला और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। हमले को सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया और दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 85 जवान मारे गए। मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है, राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गाजा में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। इस संबंध में इजरायली राजदूतों को जानकारी दे दी गई है और पश्चिमी किनारे पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने गाजा में की गई इसराइल की सैन्य कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा है कि इसराइल द्वारा गाजा के लोगों के लिए सहायता बाधित करने से एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। उधर इसराइल ने ब्रिटेन की इस कार्रवाई को खारिज करते हुए कहा है कि वो बाहरी दबाव में अपनी सुरक्षा नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इस बीच यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की ब्रसल्स में हुई बैठक में इसराइल के साथ व्यापार समझौतों की समीक्षा पर सहमति बन गई है। यूरोपीय संघ के देश इसराइल के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं। यूरोपीय संघ के कुल व्यापार में से 32% व्यापार इसराइल के साथ होता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों को अपग्रेड और पुनर्विकसित किया गया है।
कल 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। सबसे ज्यादा 19 स्टेशनों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9 और राजस्थान में 8 अमृत भारत स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5वां स्टेशन भी नागरिकों को समर्पित किए जाएंगे। इन स्टेशनों को कई शहरों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चौड़ी सड़कें, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, आधुनिक प्रतीक्षालय, लाउंज, आधुनिक शौचालय और लिफ्टों का निर्माण कर इन अमृत भारत स्टेशनों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदेह बनाया गया है। इन स्टेशनों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। ये स्टेशन उन्नत यात्री सूचना प्रणाली से लैस है, जहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। आनंद कुमार के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास से कथित रूप से नकदी बरामद होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने जांच रिपोर्ट और न्यायाधीश वर्मा का जवाब पहले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी। प्रोफेसर खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रथम दृष्टया धन शोधन में शामिल हैं। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि नवंबर 2023 में मामले से जुड़ी 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त किए जाने तक आरोपियों ने आय का लाभ लिया। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर की जाएगी। मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य की शिक्षा यात्रा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि मील का पत्थर साबित हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सफलता के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि यह देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। अटारी वाघा संयुक्त चेकपोस्ट पर आम लोग आज शाम से बीटिंग रिट्रीट समारोह देख सकेंगे। दो अन्य सीमा चौकियों फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलका में सदगी पर भी आज से आम लोग बीटिंग रिट्रीट देखेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड रोक दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी समाधि स्थल वीरभूमि में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने 29 मई से 2 जून के बीच तापमान के 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का हाई अलर्ट जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 26 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में अगले 7 दिन तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। इस वर्ष के कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुल 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 30 जून को रवाना होगा। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 17 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत ने राजनयिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया। गाजा में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित की। इजराइल ने कहा बाहरी दबाव में अपनी सुरक्षा नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। मौसम विभाग ने 26 मई तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।